नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रूपये की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और जिलों को 31 दिसंबर तक रिक्तियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में हारने वाले किसी भी प्रत्याशी ने ईवीएम के डाटा सत्यापन के लिए आवेदन नहीं किया। और बिहार राज्य महिला आयोग ने सोनपुर मेले में देह व्यापार से जुड़ी खबरों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। आयोग की टीम 1 दिसंबर को करेगी स्थल निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 10 लाख जीविका दीदियों के खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रूपये प्रति लाभुक की दर से 1,000 करोड़ रूपये की राशि अंतरित करेंगे। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की 9,50,000 और शहरी क्षेत्र की 50,000 महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि 14 दिसंबर तक सभी पात्र जीविका दीदियों के खाते में राशि अंतरित करना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 1,40,00,000 महिलाओं के बैंक खाते में योजना की राशि भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों और जिलों को 31 दिसंबर तक रिक्तियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि रिक्तियों की जांच के बाद सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित नियुक्ति आयोगों को इस बारे में अधियाचना भेजेगा। श्री कुमार ने विभिन्न आयोगों और चयन एजेंसियों को अगले वर्ष जनवरी तक नियुक्ति के लिए वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही किसी भी परिस्थिति में परीक्षा का अंतिम परिणाम विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 1 साल के भीतर घोषित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में से किसी भी हारने वाले उम्मीदवार से जली हुई मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। गौरतलब है कि आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद 17 जून को ईवीएम की जली हुई मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैंडम तरीके से 5 मतदान केंद्रों के लिए वीवीपैट पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन किया गया था। मतगणना में कोई विसंगति नहीं पाई गई। इसके अलावा 2,616 प्रत्याशियों में से किसी ने भी पुनर्मतदान का अनुरोध नहीं किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद नई दिल्ली में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेश राम ने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने और नए सिरे से तैयारी करने पर सहमति बनी है।
जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है और अब हमें आंतरिक जो समीक्षा कर चुके हैं, हम संगठन को सृजन के नई तरीके से हम पुनः अपने संगठन को खड़ा करने में हमें जोर देना चाहिए और नई तैयारी करनी।
प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सभी आरक्षित पदों में बदलाव होगा। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पिछले 2 चुनावों में जिन पदों पर जिस कोटि के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, वहां पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। गौरतलब है कि नीतीश सरकार ने वर्ष 2006 में पहली बार सभी पदों का आरक्षण लागू किया था, जिसका चक्र वर्ष 2011 में समाप्त हो गया। इसके बाद वर्ष 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव में आरक्षण का चक्र सामान्य रहा था। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बसपा प्रमुख मायावती को लिखे पत्र में उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए 400 सूचीबद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि माफियाओं की सूची और उनसे संबंधित दस्तावेज न्यायालय को सौंप दिए गए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद शीघ्र ही इनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि 1208 कुख्यात अपराधियों की एक नई लिस्ट भी बनाई जा रही है।
जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं।
डीजीपी ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के आसपास पिंक पुलिसिंग को और बेहतर किया जाएगा।
इम्पॉर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिस कर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी।
प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण भवनों के निर्माण के लिए अभियंता और ठेकेदार प्रत्येक महीने 2 बार बैठक करेंगे। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने 19 विभागों से जुड़ी भवन निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए। निर्देश के अनुसार निर्माण कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय होगी। साथ ही भवन निर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच विभाग के केंद्रीय प्रयोगशाला में की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। बिहार महिला आयोग ने सोनपुर मेले में देह व्यापार से जुड़ी खबरों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। श्रीमती मिश्रा ने बताया कि आयोग की टीम 1 दिसंबर को संबंधित स्थल का निरीक्षण कर महिलाओं से बातचीत करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और अंतिम उपाधियां तथा प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट समय पर परीक्षा आयोजन करने और परिणाम प्राप्त करने के हकदार हैं। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के भीतर डिग्री प्राप्त करने के भी हकदार हैं। यह भी कहा गया है कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में आयोग दंडात्मक कार्रवाई करेगा। CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2026 के लिए आवेदन तिथि जारी कर दी है। कल इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभ्यर्थी 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष 8 फरवरी को होगा। राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में आज एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि सम्मेलन में धर्म के बहुआयामी स्वरूप और भारतीय दार्शनिक परंपराओं में उसकी भूमिका पर चर्चा होगी। इस चर्चा में 9 देशों के विद्वान शामिल होंगे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद में सबसे कम 9.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में क्रमिक गिरावट हो सकती है। वहीं सबसे कम दृश्यता 450 मीटर पूर्णिया में दर्ज की गई। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान 1 या 2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने के आसार हैं। धुंध और ठंड में बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई शहरों की हवा प्रदूषित हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना सहित 9 शहरों की हवा प्रदूषित रही। राजधानी पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 165 दर्ज किया गया। वहीं हाजीपुर का AQI 161 रिकॉर्ड किया गया। 47 AQI के साथ बेगूसराय की हवा सबसे स्वच्छ रही। शिक्षा विभाग ने शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोधन बीघा में तैनात विशिष्ट शिक्षक संजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग ने विधानसभा निर्वाचन कार्य में उनकी उदासीनता और शिथिलता को लेकर यह कार्रवाई की है। इधर मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने औरंगाबाद के मद्य निषेध अधीक्षक अनिल कुमार आजाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक किशोर की मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मामले में काशीचक थानाध्यक्ष अक्षय कुमार गुप्ता समेत चार पुलिसकर्मियों की निलंबित कर दिया गया है। निगरानी टीम ने नालंदा जिले के कराय परशुराय से एक राजस्व कर्मी संजय कुमार को 4,500 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कटिहार रेल मंडल के 16 रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन पर 115 सुविधा सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला अंडर 23 T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के एलिट ग्रुप मुकाबले में दिल्ली ने बिहार को 89 रनों से पराजित कर दिया। इधर सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार का मुकाबला आज मध्य प्रदेश से होगा। यह मैच कोलकाता में खेला जाएगा। कोलकाता में आयोजित ईस्ट जोन स्मिता वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार की कुमकुम कुमारी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में बिहार ने कुल 4 पदक जीते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रोजगार से जुड़ी घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सरकारी नौकरियों को भर्ती कैलेंडर जनवरी में। प्रभात खबर ने मेडिकल कॉलेजों में रिश्वतखोरी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बिहार समेत 10 राज्यों में ईडी के छापे। खगड़िया के मेडिकल कॉलेज समेत देशभर में 15 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई। दैनिक जागरण लिखता है, सीवान में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग करते 50 लाख के आभूषण लूटे। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पंचायत चुनाव मल्टीपोस्ट ईवीएम से होंगे, 10 चरणों में चुनाव कराने की चल रही है तैयारी। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। आज अखबार लिखता है, हांगकांग में 7 इमारतों में भीषण आग, 65 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रूपये की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और जिलों को 31 दिसंबर तक रिक्तियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में हारने वाले किसी भी प्रत्याशी ने ईवीएम के डाटा सत्यापन के लिए आवेदन नहीं किया। और बिहार राज्य महिला आयोग ने सोनपुर मेले में देह व्यापार से जुड़ी खबरों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। आयोग की टीम 1 दिसंबर को करेगी स्थल निरीक्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।